नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शासन ने जारी किया संशोधित आदेश। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मानदेय में की गई वृद्धि। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। संध्या समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी देशवासियों से राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हैदराबाद में आज लोकमंथन के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को देश की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और अमूल्य परम्पराओं को मजबूत करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज सहित अन्य विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की बैठकों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, पीएमजीएसवाई और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों और गुणवत्ता से हों।
वहीं बैठक में मौजूद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की किन्हीं कारणों से रुकी हुई विभिन्न योजनाओं को लेकर समय सीमा भी तय की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय समिति की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअली शामिल हुए। कृषि मंत्री ने किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेरबाड़ बनाने के लिए विशेष बजट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनकी खेतों में रुचि कम होती जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पूर्व में प्रदान किए जाने वाले बजट को फिर से बहाल किया जाए। श्री जोशी ने कहा कि राज्य की ऊंचाई वाली पर्वतीय क्षेत्रों में तुमड़ी आलू की पारंपरिक खेती पर शोध होना चाहिए। उन्होंने इस फसल की बढ़ती मांग और इसमें संभावनाओं को उजागर करते हुए इसे बढ़ावा देने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की परंपरागत फसलें जैसे मंडुवा, सावा, कालाभट, तोर और राजमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन फसलों के बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उड़द और अरहर जैसी दलहन की नई प्रजातियों को विकसित करने का भी सुझाव दिया। कृषि मंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और कीट व्याधि नियंत्रण के लिए जैव रसायन विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। मैंने अनुरोध किया कि पूर्व में 2 साल पहले तक केंद्र सरकार द्वारा घेरबाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से ये दिक्कत हमारे प्रदेश सरकार के सामने आ रही है। और मैंने अनुरोध किया कि जब तक नई तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं करते, तब तक ये पूर्व की भांति इसको कमजोर रखा जाए। इस प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती है, आज हम 38% से अधिक हम ऑर्गेनिक हैं। आज हमें जैविक खाद की आवश्यकता है, इन मुद्दों को मैंने उठाया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे हैं। इसके लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, आवश्यक संसाधनों और मानदेयों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि संशोधित आदेश राज्य के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
आवास व्यवस्था से लेकर, भोजन भत्ता से लेकर, स्पोर्ट्स किट से लेकर, यात्रा भत्ता से लेकर विविध व्यय में जो है हम लोगों ने परिवर्तन किया है। जैसे कि हमारा आवासीय व्यवस्था में पहले हम लोग 150 रुपये हम लोग देते थे, जो अब 180 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रशिक्षक किया गया है। इसके साथ ही भोजन भत्ता जो है, जो पहले 250 रुपये था, अब उसे बढ़ाकर हम लोगों ने 480 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे उपकरण, जो खेल सामग्रियों को लेकर जो धनराशि पहले निर्धारित थी 25,000, वह बढ़ाकर 3,00,000 रुपये कर दिया गया है। और लेखन सामग्री, जलपान हो गया, मैदान मार्किंग सामग्री हो गया, मैदान का अनुरक्षण इत्यादि हो गया, जिसकी धनराशि पूर्व में 25,000 हुआ करते थे, अब वो 40,000 की धनराशि कर दी गई है। यात्रा भत्ता, इसकी भी लगातार डिमांड खिलाड़ियों के द्वारा होती थी, जो कि अब पहले 1,500 रुपये था TA, अब उसे बढ़ाकर जो है 2,000 रुपये बढ़ा दिया गया है।
खेल मंत्री ने कहा कि इससे न केवल खिलाड़ियों की तैयारियों को बल मिलेगा बल्कि उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधित आदेश से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मजबूत आधार मिलेगा। यह कदम न केवल राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनका सफलतापूर्वक मार्ग प्रशस्त करेगा। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि EVM मशीनों से मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट और ETPBS के लिए 10-10 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट और ETPBS से मतगणना की जाएगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से EVM मशीनों से मतगणना शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी कार्मिकों को मतगणना से जुड़े दिशा निर्देशों का भी पालन करने हेतु सभी जरूरी कार्रवाई समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मतगणना के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर और सहायकों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य वर्ष 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक रेल विकास निगम लिमिटेड ने 125 किलोमीटर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया है। ऋषिकेश में पत्रकारों से बातचीत में रेल विकास निगम के महाप्रबंधक अजीत यादव ने बताया कि इस योजना के दौरान गत 4 नवंबर तक 28 ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि दिसंबर 2025 तक 10 और ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 213 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली जाएगी। अभी तक कुल 6 MT और 6 एस्केप सुरंगों के कार्य पूरी तरह से खुदाई कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। इस परियोजना के पूरा होने पर यात्रा के समय और लागत में भी काफी कमी आएगी। श्री यादव ने बताया कि चंद्रभागा, शिवपुरी, गुलर और अलकनंदा नदियों पर 19 में 5 बड़े पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 13 पुलों को इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की ओर से चमोली जिले में 4G सर्विस सैचुरेशन के तहत 74 नए टावर स्थापित करने का काम जारी है। इस वर्ष दिसंबर माह तक सभी टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने BSNL अधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने टावर स्थापना कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रतिदिन इसकी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर टावर स्थापना कार्यों की सूची संबंधित SDM के साथ साझा करें। जिलाधिकारी ने सभी SDM को राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से टावर स्थापना कार्यों की नियमित करने के निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान करने को भी कहा। बैठक में BSNL के अधिकारियों ने बताया कि टावर लगाने का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर तक सभी टावर स्थापित कर लिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शासन ने जारी किया संशोधित आदेश। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मानदेय में की गई वृद्धि। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।